आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के समयसार गाथा 35 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय और गुचा चकासे चित्त भावाय भावाय सर्वभावंत।
ऐसा जानकर उसे छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी ये सब प्रभाव हैं ऐसा जानकर छोड़ देता है। समस्त चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह प्रभाव ही है, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व पार भावों को तत्काल छोड़ देता है। जब तक परवस्तु को भूल से अपनी समझता है तभी तक ममत्व रहता है, और जब यथार्थ ज्ञान होने पर परवस्तु को दूसरे की जानता है तो दूसरे की वस्तु में ममत्व कैसे करेगा, अर्थात तू नहीं रहे यह प्रसिद्ध है। इसमें पूरी एक एक बात सांगोपांग की व्याख्या करने के पहले मैं ये कहना बताऊंगा कि देखो, मैंने कल तो ये कहा था कि ज्ञान में ही प्रत्याख्यान होता है, तो त्याग कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा त्यागना नहीं पड़ता। और आज ये कह रहे उदाहरण में कि जब वो ऐसा जान कर उसे तत्काल छोड़ देता है, भाषा है कि नहीं है? तो अभी तो कहते हैं कि छोड़ने की बात रही ना, कि तत्काल छोड़ देना चाहिए ना, तो फिर नीचे भावार्थ में लिखा और वैसे भी निकलता है कि ये मेरा नहीं है ऐसा जो मान लिया, इसी का नाम तत्काल छोड़ देना है। माने वो ऐसी कोई क्रिया वाली बात नहीं है, इन्हें तो समय साल मेरे हाथ में है और मैंने ये जान लिया कि मेरा नहीं है तो आपका नाम लिखा है तो ये आपका है, तो मैंने ऐसा जान लिया तो भले ही ऐसा मेरे हाथ में भी बना रहा, इसी का नाम छोड़ देना है। और जगत ऐसा अर्थ करता है कि हमने इस रूप में देकर आपको दे दूं, यहां से हटा दूं, तब मैं इसे छोड़ना कहलाया। आएगा तो छोड़ देता है शब्द आएगा ना, तो कहते हो छोड़ने की बात लिखी ना, तुम कहते छोड़ता नहीं है, तो पहली परिभाषा बता दी तो निकलेगा ना, उसको ममत्व नहीं करना, इसी का नाम छोड़ना है। बाकी तो क्षेत्र का क्षेत्रांतर होना, ये तो पुद्गल का पुद्गल में, तेरा तेरे में है। मान लो तुम ऐसा नहीं भी मानो कि ये मेरा नहीं है, ऐसे ही मानते रहोगे ये मेरा है तो ही पाप का उदय आएगा तो छूट जाएगा। वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर की जो क्रिया है वो तो तेरी ये मान्यता नहीं होने पर भी हो जाती है ना, उससे मान्यता का क्या संबंध है, बोलो। ये संयोगों के वियोग का हमारी मान्यता से कोई संबंध नहीं है। अब एक एक बात पर अपन जो धोबी का उदाहरण दिया है उस पर पहले विचार करें। वो ये कहते हैं पहले तो एक अपने दिमाग में एक चित्र खड़ा करो। एक काव्य शास्त्र में एक चित्र काव्य भी होता है। चित्र काव्य का मतलब ये है कि वो जो कविता लिखी गई है एक एक छंद उस पर एक एक चित्र बन सकता है। क्या जैसे कि कालिदास का जो मेघदूत है उसे चित्र काव्य कहा जाता है, तो उसका एक एक छंद ऐसा है कि एक एक चित्रकार उस पर बहुत बढ़िया चित्र बना सकते हैं और बनाए हैं, एक एक काव्य पर चित्र बना दिया। तो देखो इसका चित्र कैसे बने, तो लिखा ना एक प्रताप, जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रम बस दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़ कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है, इसका तो हो सकता है ना, एक बढ़िया चित्र बन जाएगा ना, एक चदरा ओढ़ के आराम से आदमी सो जाए, क्यों क्यों। अब आगे देखो और, किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस छोर से पल्ला पकड़ के खींचता है तो ऐसा भी चित्र में बन सकता है ना कि वो सो रहा है ओढ़ के और दूसरा उसका पल्ला पकड़ के खींच रहा है और उसे नग्न कर कहता है, मैंने खींच लिया है, और नग्न का मतलब वो जैसा भी मैंने बनियान पहने तद्दी पहने सो रहा था वैसा रह गया, उसी का नाम नग्न है। इन नग्न का नाम दिगंबर से मतलब नहीं है, अब हम बोलते हैं नंगे बदन, बोलते कि नहीं बोलते अपने ऐसा, जैसे अपन नए देश में रहते हैं अथवा जब लोग अपन फुल ड्रेस में नहीं है अकेली बनियान पहने हैं, तो उसको भी नंगे और फिर बनियान उतार दी, उसको भी नंगे बदन कहते क्या नहीं कहते। ऐसा एकदम ऐसा तदरा ऊपर हो गया है और वो नंगे बदन एकदम उठ के बैठ गया है और वो कह रहा है जैसे मानो जाग जाग जाग, ये तेरा नहीं है तदरा, ये मेरा है। ऐसा चित्र बन सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं, एक अपने पूरा दिमाग में इसका एक चित्र खड़ा करो। एक एक अंग देखो, फिर उसमें दूसरा चित्र खड़ा करना कि गुरु जी ने बताया कि देख शास्त्र में लिखा है कि तेरा नहीं है, ये देह तेरी नहीं है, वहां भी चित्र खड़ा कर सकते हो, बन सकते हैं ना। इस एक में दो चित्र बन सकते हैं। तो बनारसी दास ने इसका अच्छा बढ़िया सुंदर लिखा है,
जैसे कोई जन गयो धोबी के सदन तिन, पहिरो परायो वस्त्र मेरो मानी रहो है, धनी देख कहो भैया यह तो हमारो वस्त्र, सीने पहचानते ही त्याग भाव लहो है। तो बनारसी दास के छन्नों की ये विशेषता है कि इसमें अर्थ नहीं करना पड़े, अपने आप अर्थ होता चला जाता, अन्वय नहीं लगाना पड़ेगा। यदि ढंग से इसे पढ़े आदमी, गद्य में पढ़े पद को, तो वो अर्थ अपने आप होता जाएगा। वो अलग बात है कि हम ब्रजभाषा के शब्दों को नहीं जानते हों और वो हमारे लिए शब्द नहीं आए और हमको अर्थ करना पड़े, लेकिन वैसे पंचाध्यायी की भाषा है, नाटक समयसार की भाषा है, कोई ऐसी भाषा है। तो जितने पद्यानुवाद मैंने लिखे हैं ना, उनमें भी मैंने यही ट्राई किया है कि वो आदमी ऐसा बोलता जाए ना गद्य जैसा, तो उसका अर्थ उसकी समझ में आता जाए। ये ट्राई किया जितना संभव हुआ है उतना। देखो, जैसे कोई जन गयो सोरी के सदन तिन, पहरो परायो वस्त्र मेरो मानी रहो है ना, क्लियर। धनी देख करो भैया यह तो हमारो वस्त्र, सीने पहचानते ही त्याग भाव लहो है, तैसे ही अनादि पुद गल सो संयोगी जीव। पुदगल का तद्रा उड़ के बैठ गया है, संग के ममत्व सो विभावता में भयो है, भेद ज्ञान भयो तबे आपा पर जान्यो तबे, न्यारो पर भाव सो स्वभाव निज गयो है। सुनने ना गद्य में और ज्यादा स्पष्ट है, तो कोई के घर से भ्रम बस दूसरे का वस्त्र लाकर, अब इसकी जो अभी तो चित्र बनाया था ना, अब फिल्म बनाओ क्या, कि पहले उसको धोबी के घर भेजो, तो 10 मिनट की फिल्म भी बन जाएगी ना एक छंद में। कैसे कोई गन गए धोबी के सदन, धोबी की झोंपड़ी हो, धोबी बैठा है, भैया मेरा वस्त्र दो, मेरा चदरा देना, और एकदम जल्दी जल्दी उसने निकाल करके उसे चदरा दे दिया और वो लिया करके और उड़ के सो गया। एक सीन बन गया कि नहीं बन गया है ना। जैसे कोई बस भ्रम बस दूसरे का वस्त्र लाकर, क्या भ्रम बस के मेरा है, तो उसने भी धुलने को दिया था, अब वो वस्त्र तो दूसरे का भी आए थे, अब धोबी तो भूल गया, तो दूसरे का चदरा उठा करके आपको दे दिया, उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। यानी मतलब उसे अपना समझ के सो रहा, तो किसने अज्ञानी किया थे, स्वयं ने, धोबी ने नहीं किया, यानी कर्म के उदय ने नहीं किया, ऐसा घटाना है वहां पर, किसी गुरु ने नहीं किया, निमित्त कैसे वजन हटाना है, ये बताना है कि स्वयं अज्ञानी हो रहा है, स्वयं ही उड़कर सो रहा है और अज्ञानी हो रहा है। किंतु जब दूसरा व्यक्ति, अभी क्या हुआ, तो दूसरा व्यक्ति फिर धोबी के घर गया, तो उसने कहा भी मेरा चदरा दो, तो उसे चदरा दिया, तो उसने देखा और कहा ये चदरा तो मेरा नहीं है, क्योंकि ये तो फटा है, मेरा तो फटा नहीं था, साबुत था, और मेरे पे तो मेरा नाम लिखा था,
वैसे तो नाम लिखा नहीं है। तो धोबी ने कहा कि भैया ऐसे ही चदरा अभी फलाने भाई साहब ले गए हैं, हो सकता है उनसे बदल गया हो तुम्हारा, तो मैं कल जाऊंगा और उनसे लेके आऊंगा तो आप फिर ले जाना। तो उसे जल्दी थी कि नहीं नहीं कल तो मैं रात की गाड़ी से जा रहा हूं, अब इसे बल चित्र बना ना अपना बराबर फिल्म, तो सर तुम मैं वहीं से ले लूंगा और तो तुम उसे दे देना। अब वो उसके घर पहुंचा बाबू साहब, दो सीन हो गए ना, क्या धोबी के यहां पहले आदमी गया और लेके चदरा के अपना ओढ़ के सो गया, फिर दूसरा आदमी गया और फिर चदरा नहीं मिला तो वो आया लौट के और वो सो रहा था ओढ़ के, तो उसने एकदम उसका खून पकड़ के जगाया। क्यों ये तीसरा सीन पर कहा भैया जाग जाग देख ये तेरा वस्त्र नहीं है, मेरा है, कैसे नहीं है तेरा है, मेरा ही है, देख मेरे मेरा नाम लिखा है इसमें। और उसने तीनत पहचानत अपने चिन्ह बताए और उन चिन्हों से चिन्हा पहचाना कि ये तो सचमुच मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पे तो मैंने नाम भी नहीं लिखा था और ये नाम भी मेरा नहीं है। तो फिर इतना होते ही इतनी घटना घटी और उसी समय उसको ये भाव आ गया कि ये मेरा वस्त्र नहीं है। तो कहते हैं कि जब सम्यक ज्ञान हुआ तो उसी वक्त त्याग भी हो गया, ये बताने के लिए कह रहे हैं त्याग भाव लहो है, माने चीनत पहचानत ही त्याग भाव लहो है। लिखा ना वस्त्र का थोर पल के खींचता और फिर नग्न कर कहता कि तू शीघ्र जाग सावधान हो, ये मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, ये सब है ना भाई धोबी के बदले में आ गया है और ये मेरा है सो मुझे दे दे। तब बारंबार कहे गए इस बात का, अभी बारंबार कहने की एक ही दफे में दे सकता था वो तो, लेकिन उनको दास्तांत में गुरुदेव बारंबार समझाते हैं और शास्त्र में बार बार पढ़ता हम पढ़ते हैं और उससे हमें ज्ञान होता है ना, तो वो उदाहरण बनाना था उसका, इसलिए उसको बारंबार कहवाया दे दे भैया मेरा दे दे, तू मेरा है देख ले अच्छी तरह से पहचान ले, मैं तेरे से बार बार कहता हूँ। इसे बारंबार कहने का मतलब यह है एक दफे में हम कहां चूतते हैं मिथुला जी, एक दफे में चूतते हैं, हजारों दफे गुरुदेव कहते हैं और हजारों दफे हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, तब भी गाड़ी वहीं की वहीं रहती है ना, इसलिए उन्होंने बारंबार कहे जाने पर जब उसको चिन्हों से देखकर जब ख्याल आ जाता है तो जिस समय सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी समय त्याग हो जाता है, माने दूसरा समय नहीं लगता है, और जबकि उतार कर देने में तो दूसरा समय लगेगा, ये भी लग सकता है कि भाई साहब अभी मैं अपना ले आऊंगा तब दे पाऊंगा, मेरी इज्जत का सवाल है अभी मेरे को बहुत जरूरी है, मैं ऐसा नंगा कहां से हो जाऊं, इसलिए मैं तो अभी तो नहीं पहने रहूंगा, कल आपका जरूर दे दूंगा। तो जब वो दे देगा तब त्याग नहीं कहलाएगा, जब उसने स्वीकार कर लिया और ज्ञान में मान लिया कि मैं दे दूंगा तो त्याग वही हो गया, ये कहते हैं बस ये फर्क है। ये सारा जगत जब वो चदरा दे देगा तब त्याग मानेगा, और यहां ये समझा रहे कि जब उसने ये जान लिया उसी वक्त स्वीकार कर लिया कि मैं तेरा दे दूंगा, वो त्याग उसी वक्त हो गया, अब वो जो देने की क्रिया होगी उसमें बहुत समय भी लग सकता है। अगले चदरे की बात हो रही है, क्यों ऐसी भी बहुत सी चीज हो सकती है, क्यों कि दिन के छोड़ने में समय लग सकता है, लौकिक पदार्थ भी कैसा मैं ये धोती पहने हूं, मैं कल धोकर लोहा करा के बढ़िया करा के आपको पहुंचा दूंगा, क्यों तो 24 घंटे भी लग सकते हैं। और कोई दूसरी चीज हो कि हमने मान लिया कि मकान आपका है, अभी मिला कि सड़क पर तो सामान नहीं रख लू, अब मैं किराए का मकान खोजता हूं, मैं चला जाऊंगा आपका दे दूंगा, और 6 महीने भी लग सकते हैं। चले कोई इसका सवाल नहीं है कि तू कब छोड़ेगा, लेकिन तूने स्वीकार कर लिया कि मेरा नहीं है तेरा है, तो उसी वक्त भी वो त्याग हो गया। अनंतानंद जी कैसा चली गई, माने वो एक नंबर का त्याग तो हो गया, अब जो तू खाली करके देगा तो दो नंबर का त्याग है। क्यों? तो वो आचार्य कहते हैं कि ज्ञान में त्याग होता है और दोनों का एक ही काल है, यानी ज्ञान होने का, सम्यक ज्ञान होने का और सम्यक तर्क के आरंभ होने का, माने त्याग भाव होने का एक ही काल है। देखो क्या कहता, देखो मेरा मुझे दे दे, बारंबार कही गई बात को सुनता हुआ वह है उस वस्त्र के सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके, इसका बहुत मर्म है उस दास्तांत में। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कहा शरीर तू नहीं है, काम स्वीकार है, ऐसा नहीं, अच्छी तरह खूब विवेक पूर्वक स्वीकार करके मंथन करके और कहे तब वो वास्तव में सम्यक ज्ञान है। ऐसा होता कि नहीं होता है? लोक में हम एक बात कहते हैं तो आप एकदम हां भर देते हैं, क्यों समझ में जल्दी नहीं है, आप कल जवाब देना, लेकिन सोच समझ के जवाब देना। कहता मैंने सोच लिया, मैं तैयार हूं, लेकिन हमें हम नहीं मानते। तुमने सोच भी लिया हो तो अभी 24 घंटा फिर भी और सोचो और फिर तुम कल एक जवाब भले ही कल देना, लेकिन हम आज नहीं मानेंगे, बोलते ना लोक में। कहते बता अभी किताब है कि 10 रुपए की है, आपको लेना हो तो ले लो, कहना साहब दे दो, नहीं ऐसे नहीं, आप सोच लो अच्छी तरह से और बाजार में तलाश आओ, कल ले लेना। हम 24 घंटा सोचने लगे तो बाजार में तलाश के आओ, अब आपको यहां से सब जगह 12 में मिले और हमारे यहां 10 में मिले तो लेना, क्यों बोलते कि नहीं बोलते? मैंने ऐसा पूरी परीक्षा करके निर्णय किया। ये कहना चाहते हैं कि गुरु के कहने से ऐसा मान लिया, शास्त्र के पढ़ने से मान लिया, उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में माना हुआ होता ही नहीं। एक समय कोई दूसरे रहे तुम कहां फंस गए, इधर 8 रुपया मिलती थी, हाँ भैया हमें नहीं लेना, एक मिनट में क्या है ना, वो जो जल्दी मानने वाले हैं वो जल्दी बदलते ही बहुत जल्दी है। हम अशोकनगर में थे, एक सेठ जी की ऐसी आदत थी, सच्ची बात बता रहा हूँ, मतलब घर में नाम नहीं लेता हूँ अकेला, कि जो भी पंडित आता था तो मेला हम आया हमारा व्याख्यान हुआ, अरे पंडित जी आपने गजब कर दिया, हमारी आंखें खोल दी, आज तक तो हमको ऐसा था ख्याल में नहीं आया ऐसे से बोलते। फिर दूसरा पंडित आया और उसने हमसे बिल्कुल उल्टा बोला, तो उससे भी कहा अरे पंडित जी आपने गजब कर दिया, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। फिर तीसरा पंडित आया, उसने फिर उससे उल्टा बोला, अरे भी पंडित जी आपने गजब कर दिया, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आज तक हम तो समझे नहीं थे। तो ऐसा जब मैं तो वहां परमानेंट रहता था ना, तो 5-6 पंडितों से ऐसा कहते कहते उनको मैंने सुना, तीन इस ग्रुप के। तो मैंने कहा कि दाऊ आपकी आंखें कितनी तरह बंद होगी, कितनी तरह बनेगी, जैसे हर तरह खुलनी खुलनी है, क्योंकि वहां तो वो खुलती नहीं, उसके पहले तो बंद हो जाती है। माने लोगों की प्रशंसा करने का तरीका ऐसा बना लिया है, मैंने उनको उनकी प्रशंसा करना है ना, तो हम तो आज लोगों ने बुद्धू बनाया, हम तो समझ नहीं आ रही, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी, एक उनको प्रशंसा करने का तरीका हो गया, पर कुछ मतलब नहीं, क्या खुली आंखें, क्या बननी थी, आप क्या समझे रहे हो, कुछ पता नहीं है, कुछ होश नहीं है। इस गाथा का ऐसा अर्थ है हम तो कभी सुना ही नहीं था, तो तुम इस गाथा भी तुमने पढ़ी थी, गाथा सुनी थी और उसका क्या अर्थ है वो तुमने बताना था, तुमने गाथा ही नहीं पढ़ी थी, उसका अर्थ ही नहीं बिचारा था, तो तुम्हारे लिए तो हरा ही अर्थ नया है। 90% सोता ऐसे नहीं होते कि आपने कभी नहीं गाता ऐसा गलत का अर्थ निकाला, नियत का तो ऐसा समझते नहीं थे, तुम क्या समझते थे, ए नियत नाम का बोल कोई चौधरी गाथा में है, तुम्हें ये भी पता था। क्यों आज भी हमने क्या बताया है वो हमें पता है कि तुम कितना समझ पाए हो, इसलिए मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूं कि स्वाध्याय जैसे चलता हो तो पहले खूब अपने माथा मार मार के पढ़ना उसे, फिर आपको गुरुमुख से सुनना, फिर बाद में पढ़ना, तो आपको समझ में भी ज्यादा अच्छा आएगा क्योंकि पहले आप तैयारी करके आए ना, तो एक एक बात आपको ग्रहण होगा। समझने की दृष्टि से भी अच्छा है, वस्तु भी समझ में आएगी और अपनी बुद्धि भी समझ में आएगी। अच्छी होगी तो अच्छी और बुरी होगी तो बुरी। देखो तो जितना आसन ने बताया उतना मैंने भी निकाल लिया था, तो मैं भी ऐसा बिल्कुल बुद्धू तो नहीं हूं क्यों, और नहीं निकला हो तो देखो ये बात मेरे ख्याल में नहीं आई थी, मैंने पूरी तरह से पढ़ा था, तो अपनी कमजोरी भी ख्याल आएगी और कदाचित आप बिल्कुल वैसे का वैसा आपने निकाल लिया था तो आप अपनी को बुद्धि पर भरोसा आपको जागृत होगा। ये कहते हैं हमेशा जो जवाहरात में ऐसा होता है कोमल सिंह जी कि वो बनवाते हैं ना कि पैसा धरने के धरो, इसको पैसा धरो धरो, मैंने आगे कपड़े कहते ऐसा है किस भाव आया नील की रेट लिखी है फिर ले आए उसका लिख दी। वहां तो क्या होता कच्चा माल लाते हैं 71 करोड़ों का, फिर उसमें पक्का बनवाते हैं। अब पक्का बनवाने के बाद में उसका हम नहीं कह सकते कि ये माल कितने का लागत है इसकी, क्योंकि वो बाकी के माल के नाम कितना खड़ा होगा क्या होगा, ये खराब निकलती है अच्छी चीज निकलती, तो जो बन के तैयार हुआ है तो ये कहते हैं कि अब आप बाबू साहब आप अपनी बुद्धि लगाकर बताओ कि क्या भाव का माल होना चाहिए, इसमें कितने पैसे खड़े होंगे। तो एक मैं अपनी बुद्धि से लगाता हूँ, तो अपना भाई को कहते हैं वो अपनी बुद्धि से लगाता है, फिर चार आदमी अपनी अलग अलग बुद्धि से लगाते हैं, फिर एक्सपर्ट से लगवाते हैं, ज्यादा कीमती होता है ना, तो वो कहता भाई ये 1,00,000 कैरेट का है, 4 कैरेट का है, 4,00,000 रुपए का है, तो वो कहते मैंने तो भी इतना ही किया था, उसे खुशी होती कि नहीं। और एक ने कहा मैं 3 का समझाता, तो बोले यार अपन नहीं अपन चूक गए, ये कह रहा मैंने 5 का समझा था अरे 4 का निकला, तो इसका मतलब है कि मैं अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं हुआ हूं। तो अपनी बुद्धि की परीक्षा भी होती है और कहीं वो मूल्य हमने उसका आंक लिया जो बाजार में एक्सपर्ट लोग आंकते हैं अथवा बाजार में बेचने पर मिलता है तो कॉन्फिडेंस भी देखता है, क्यों 4 से 10 ऐसा होते तो हमको कॉन्फिडेंस दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है, तो रोज ही ना यही धंधा हुआ करता है, अपने पुड़िया निकाल निकाल करके आंका करते हैं, फिर एक्सपर्ट से बुलवाते हैं। आजकल तो अमेरिका में ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जो ज्यादा कीमती होते हैं ना तो वो $100 लगते हैं और जांच के लिए भेजा जाता है, 3 महीने लगते हैं बाबू साहब, और उसकी जांच करके फिर वो उसके सर्टिफिकेट बना के आपको देते हैं कि ये किस कीमत का किस भाव का है, ये किस क्वालिटी का हीरा है, फिर वो हीरा सर्टिफिकेट देख के ही बिक जाता है, फिर कोई आदमी उसे खोल के भी नहीं देखेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट जिसका होता है ना उसका पैकिंग होती है और पैकिंग में सील बंद रहता है बाबू साहब, कोई बदल नहीं सकता है, तो खुलते ही बाद में है तो सर्टिफिकेट से ही वो बिक्री होती है उसकी, सर्टिफिकेट दिखाओ तो वो उसका माल आपको उस भाव में लोग दे देंगे, बस उसे पैकिंग खोल दिया तो वो सर्टिफिकेट बेकार, बस तो तुम बदल सकते हो नहीं बदल सकते। तो ऐसे ही ये हीरा जैसा काम है समयसार का, एक एक गाथा तुम इसका मूल्यांकन करो और फिर और अपने विशेषज्ञों से पूछो और फिर जो अब तुमने बताया वो अब हमने समझा था 4 से गाथाओं का ऐसा हो तो समझ लेना कि भी हमारी बुद्धि ठीक काम कर रही है, और नहीं निकले हर दफे हमने जो अर्थ समझा था उसे दूसरा अर्थ निकले तो हमें अपने अज्ञान का भी पता लग जाए। और इतना ही नहीं है उस स्वाध्याय में 3 दफे करोगे आप तो आपको बहुत लाभ होगा, असली स्वाध्याय हो जाएगा। हमारे गुरुजी थे मन्नलाजी में गोमर साहब पढ़ाते थे तो उनकी एक आदत थी कि पाटनी जी वो पहले गाथा पढ़ते थे, फिर वो अर्थ करते थे, फिर अंत में गाथा एक दफे फिर पढ़ते थे, फिर आगे करते थे। तो हमें ये क्यों करते हैं, गाथा पढ़ना और अर्थ पढ़ना वहां तक तो सर दुनिया करती है, लेकिन वो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने जो अर्थ बताया वो आपको गाथा पर बैठ गया कि नहीं ये देखने के लिए अपन गाथा द्वारा पढ़ते हैं, और वो कहते मैं खुद ही ये देखता हूं कभी बैठा है ठीक कि नहीं, और उससे रिवीजन से गाथा बहुत जल्दी याद होती है। यदि 4 दफे मैंने ऐसा पढ़ा दिया, पहले मैंने गाथा पढ़ी फिर अर्थ बता दिया फिर गाथा पढ़ी फिर अगली गाथा पे गए तो मुझे गाथा याद हो जाएगी, ऐसा करते थे, समझे ना। मैंने देख लिया उसको कि मैंने जो अर्थ समझाया समझाया ठीक बैठा, वो ठीक बैठा जमीन बैठा, फिर तोलना उसको, फिर उसको समझना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, ये ज्ञान का तरीका यही है ना। बैठा व्यापारी क्या करे, तराजू ही तोले। तो हमें यदि तत्व का अभ्यास करना है तो ऐसा करते रहना चाहिए, हैं? उसे बार 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 पढ़ो देखो तो उसमें ख्याल में आएगा। देखो अभी क्या इसलिए कहते बार बार लिखा ना, उसका अर्थ कर रहा हूं मैं, बार बार बद बदले में आ गया, बारम्बार कहे गए आगम इस वाक्य को सुनता हुआ उस वस्तु को सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके ऐसे ही हानि भरना, यह वस्त्र अवश्य ही दूसरे का ही है। देखो पहले तो यह वस्त्र दूसरे का ही था और यह वस्त्र अवश्य ही दूसरे का ही है, ऐसा ऐसा नक्की दृढ़ता आई ना। ऐसा जान कर ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। अब वो त्याग देता है का मतलब क्या, क्यों कि ये मान लेता है कि ये मेरा नहीं। अब त्याग की प्रक्रिया में जो समय लगेगा वो लग जाएगा। अभी तो बैंक सिस्टम हो गया ना, हमें आपको पैसा मान लिया कि आपका हमको 10,000 देना है, तभी लेंगे बैंक किसे निकाल के देंगे, बैंक में 2 दिन की छुट्टी है, क्यों फिर हमने आपको चेक दिया करो यहां से जाओ, महीना भर तक नहीं भुना, तो प्रक्रिया में कोई भी समय लग जाए, लेकिन वो ज्ञान और वो उसका त्याग भाव एक ही काल में आ गया, वो प्रक्रिया जो संपन्न होगी वो होती रहेगी। ऐसे ये छूटने की, देह के छूटने की, रात की छूटने की भूमिका अनुसार प्रक्रिया होती रहेगी, लेकिन हमने ये मान लिया कि ये मैं नहीं हूं। अब देखो उन्हें इसी प्रकार ज्ञाता पर लगाओ, ज्ञाता भी, ज्ञाता माने आत्मा, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो भ्रम बस का, ज्ञाता माने आत्मा भ्रम बस पर द्रव्य के भावों को ग्रहण करके, ग्रहण करके माने ये मैं हूं ऐसा मानकर ही ग्रहण करना है, उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है, अपने में एक रूप करके मैं यही हूं ऐसा मान रहा है, और इसी का नाम है यहां सो रहा है। यहां कोई सोने वोने से मतलब नहीं है, यही सोना है ना, और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। तो अज्ञानी की बात है ना, वहां तो लिखा ज्ञाता, यहां लिखा अज्ञानी। जब श्री गुरु परभाव का विवेक करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं, मैंने ये पर है और ये तू है ऐसा करके समझाते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, ये तेरा आत्मा वास्तव में एक ही है, माने ज्ञान मात्र ही है, अन्य सर्व परद्रव्य के भाव हैं। तब बारंबार कहे गए आगम के इस वाक्य को, देखो है ना, भले ही गुरु ने कहा लेकिन वाक्य किसका है, आगम का, माने भगवान की दिव्यवाणी का। निर्देश साल गुरु तीनों आ गए, बार बार कहे गए आगम के इस वाक्य को, देखो ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, ये आगम का वाक्य है, इसका महत्व किस लिए ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि फिर गुरु की पराधीनता थोड़ी कम हो गई, गुरु के माध्यम से आया है, लेकिन ये गुरु जी कह रहे तो पूरा वजन गुरु पे आ जाता है उसकी सच्चाई का, पर आगम में भी वो बात है तो गुरु की जिम्मेवारी कम हो जाती है, तो फिर हमको नव दिगंबर भावलिंगी संत गुरु मिले तो भी काम चले, अरहंत भगवान मिले जब धुनी खिले तो भी चले, और पंचम गुण स्थान वाले मिले तो भी चले, और चौथे गुण स्थान वाले मिले तो भी, इन्हीं शब्द मिले अरहंत भगवान आदिनाथ का समोसा में उपदेश सुने तो अच्छा है, उपदेश सुने तो नहीं, तो बुद्ध बार बार कही गई आगम बात कहे ना, बाक तो वो कुंड कुंड के है ना, तो कुंड कुंड के बात कहे तो सांजी स्वामी सुनाया, पंडित रघुमचंद सुनाया, युगल जी साहब सुनाया और छोटे विद्यार्थी सुनाया, क्या फर्क पड़ता है। यदि आगम बात है कि इसलिए वो मतलब है ना, बार का ना कहा लिखा है आगम के वाक्य को सुनता, देखो बारम्बार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ है, भले कहे गए वाला कौन हो, लेकिन वाक्य तो किसका है, आगम का वाक्य है ना। वह समस्त चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके सौर पर के देखो गुरु कह रहे पर आगम का वाक्य है भगवान की वाणी है तभी परीक्षा करके है ना जनरल कृष्ण वही कह रहे तो भी क्या है अवश्य प्रभाव ही है। मैं तो एक ज्ञान मात्र ही हूँ यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर प्रभावों को तत्काल छोड़ देता है ईमान लेता है कि नहीं। अब देखो लोक में भी सुयोग व्यापारी कौन माना जाता है कोई कहेंगे साहब ये आपके पिताजी ने इसकी 2 लाख रुपए कीमत लगाई है तो ठीक है पिताजी ने लगा दिया तो ठीक है ले जाए 2 लाख में देना हो तो देगा कि वो गुरु व्यापारी नहीं है तो बताना भैया पिताजी ने काय की लगाई है 2 लाख कि तुम्हारे बाप ने लगाई है। हाँ तो उसमें क्या है लगाई है तो वे आपको 2 लाख देंगे उसमें क्या है दे देंगे मुझे तो बताओ नहीं उनने लगाई है तो दे देंगे मैं तो देखूंगा और मैं देखता हूं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं 2 लाख लगा ही नहीं सकते इसमें क्या है 2 लाख का नहीं नहीं तुम्हें पिताजी ने कह दिया भैया उनसे ही लगा है जजा जजा से अच्छी तरह से कोई बात नहीं पिताजी ने लगाई तो ले जा। अब पिताजी तो भी मुफ्त में श्रेय दे रहा है लेकिन बिना देखे नहीं कहता है देख के उसको भी लग गया फिर 2 लाख 2.25 लाख का तो भैया ठीक है उनने लगा दिया तो मैं बोल देता हूं क्यों लोग में सच्चा व्यापारी उसको कहते हैं तो देखने तो मुझे किसके 2 लाख लगाए भगवान ने भी कहा हो तो भी परीक्षा करके ही स्वीकार करना कि जैन धर्म में कह सकते भगवान मान के मेरी बात को भी तू बिल्कुल परीक्षा किए बिना स्वीकार मत कर लेना क्योंकि तू फिर मेरी बात को कर लेगा और मेरे विरोधी की भी कर लेगा और परीक्षा करेगा तो फिर मेरी बात यह है कि तू प्रत्येक मेरी रूप में ही मेरे पास ही आएगा क्योंकि मेरी बात सही उतरने वाली है जिसके पास सही माल है वो तो ये चाहता है कि खूब 10 जगह तलाश के आवे अच्छी तरह से देख के आवे 100 दफे उसको गर्व हो गए तो आवे और जिसको धोखाधड़ी करना है जिसको कम में ज्यादा माल लगाना है क्यों वो इसकी बात करे तो लिखो जाए लिखा भाव आप जब तक पर वस्तु को भूल से अपनी समझता है तभी तक ममत्व रहता है और जब यथार्थ ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की जानता है तब दूसरे की वस्तु में एक ममत्व तो कैसे रहेगा ममत्व तो नहीं रहना इसका नाम त्याग है अर्थात तो नहीं रहे है प्रसिद्ध है। अब इसी अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं अब तरति न जावत वृत्तिम अत्यंत वेगा आचार्य का कहते हैं एक अलंकार होता है जब हम लोग में भी ऐसा बोलते हैं कि तुम चलो चलो तुम पहुंचे नहीं कि मैं आ गया तुम चले नहीं कि मैं आ गया है ना ऐसा बोलते हैं मैंने तुम फिर तुम चलो ना फिर तुम आ जाओ ना फिर हम चलते हैं साथ साथ कि तुम उठ चलो ना तुम इसे तुम पहुंचोगे इसके पहले तो मैं पहुंच जाऊंगा लेकिन कैसे पहुंच जाएगा तो तुम मेरे से बाद में चलेगा तो बाद में पहुंचेगा कि नहीं कि नहीं तुम फिक्र मत करो मैं पहुंचाऊंगा तुम पहुंचे नहीं कि मैं पहुंच जाऊंगा बोलते ना कैसे आचार्य कहते हैं कि अवतरती न यावत वृत्ति अत्यंत वेगात अनवरत मनोभाव्या त्याग दृष्टांत दृष्टि ये दृष्टांत की दृष्टि त्याग के दृष्टांत की दृष्टि जब तक फीकी ना पड़े उसके पहले तो काम हो जाना चाहिए क्या जैसे कि वही कहे कि भाई एकदम वो भावुकता में गदगद हो गया ऐसा हो गया और उसने ये कहा ठीक है इस काम के लिए 1 लाख रुपया मैं देता हूं कैसा कहा क्या तो उसका ये जो भाव हुआ ना गदगद ये जब तक ठंडा नहीं पड़े तब तक भैया तू उससे ले लेना 1 लाख नहीं तो काम फिर यहाँ तो बोल देगा भाव का में, अब घर जाओगे यहाँ देखेंगे क्या काम है, कब आए कब, तब तुम काम शुरू करोगे तब दे देंगे काम हो तो फिर भेजना, फिर ये भेजना, फिर वो करना, जितना समय निकलेगा बस दिन। तो वो कहते हैं कि जब गुरु ने समझाया, उनने कहा ना कोई दृष्टांत है क्या, नहीं है मन बाबू गाथा ने पहले कहा था ना 33वीं गाथा के ऊपर, देखो कोई दृष्टांत है क्या, तो इस दृष्टांत से समझाया, तो वो दृष्टांत की दृष्टि जब तक फीकी ना पड़े उसके पहले तू ऐसा उसके पुरुषार्थ कर भावना का तेज तेरे प्रकारी दो भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का गेय बन जाए, तो ज्ञान का गेय बनते त्याग हो ही जाएगा तो काम हो जाएगा। क्या कर देखो यह प्रभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि समझे ना, पुरानी ना हो इस प्रकार अत्यंत वेग से जल्दी काम करना, वो पुरानी ना हो ऐसे अत्यंत वेग से, जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त न हो न फिर प्रवृत्ति में लग जाएगा, उससे पूर्व ही तत्काल सकल अन्य भावों से रहे स्वयं ही यह अनुभूति तो प्रकट हो जाती है, हो जाएगा। ये माता देने है ना, तो वो छक्का खेलती है, छक्का समझते कि नहीं समझते, कुछ पत्थर मत्थर होते हैं ऐसे ऊपर ऐसे पत्थर फेंकती है और फिर नीचे से चार पत्थर यहां से ऐसा बखेर के और फिर ऐसा उसको ले लेती है। यदि वो पत्थर नीचे गिर गया तो फिर वो उसके जो पत्थर नीचे से उठा के हाथ में लेने की कोई कीमत नहीं है। कभी ऐसे लेती है कि वो पत्थर नीचे से उठाया और ऊपर से जो आया तो उसमें वो उसकी चोट लगे चटके बोलने थी चट, फिर कभी चोट नहीं लगे तो फुसके बोलने थे ये फुस। एक लेना चाहिए फिर दो दो ले रहे फिर तीन तीन ले रहे फिर चार चार ले रहे दो उठा ले रहे है ना, ऐसे होते ना खेलते ना, क्या समझेंगे क्या बोलते अच्छे थे जो भी समझ लो आप। तो वो कितनी सावधानी है कि जो ऊपर फेंका है वो लौट के आना जाए उसके पहले वो सारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि तू समेटने में ही लगा रहा और वो आगे नीचे गिर गया तो खार गया तू खेल खत्म है, तेरी बाजी चली जाएगी तो सामने वाले के हाथ में बाजी चली जाएगी, तो बाजी तेरे हाथ आई है तो बाजी जाना नहीं चाहिए है? तो त्याग के दृष्टांत की दृष्टि जब तक फीकी ना पड़े उसके पहले तो अनुभव होगा क्या, और आप समझ लेना जब फीकी पड़ी तो गई 24 घंटे को गाड़ी। गुरुदेव तुमको समझा रहे हैं और तुम्हारा हृदय में गदगद हो गया, ऐसा आत्मा का अनुभव तो करो ही करना हर कीमत पर, तो अभी मैं जाकर कल करूंगा सुबह करूंगा दोपहर करूंगा तो मर गया तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो खत्म हुआ ना और तुम उठ के गया तो प्रति समय वो फीकी पड़ने वाली है और उपयोग यहां हुआ उलझ जाएगा बाद में, तो ये तेरे को भाव पक गया है तो अपन कहते ना कर ले सो काम और दे दे सो दान, बोलते क्या नहीं बोलते, यदि भाव आया है तो दे जाए, यदि करने का विकल्प हुआ है तो कर जाए, समझे ना, तेरे एक ऐसा भाव का परिपाक ऐसा बार बार नहीं होगा, ऐसा भी लोग में नहीं कहते हैं देखो भैया चांस मुश्किल से आता है चांस छोड़ना नहीं चाहिए, ये अवसर तेरे को प्राप्त हुआ है ना, क्यों ये 16वें सूरत के इंद्र की सीट खाली भई ना, तो यदि तू 6 महीने तक के नहीं गया तो समय वो भर जाएगी, फिर 22 सागर की गई तभी होता है नहीं होता है। मान लीजिए हमारी संस्था में कोई आदमी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है और वो गया मेरे गया, तुम कहते देखो भाई ये अभी तुम्हें मौका है अभी तुम्हें ले लो ये बहुत बढ़िया काम है इसे तुम पकड़ लो, नहीं नहीं मैं सोचूंगा मैं अम्मा से पूछूंगा पिताजी से पूछूंगा मामा से पूछूंगा ये करना, तू पूछेगा जब तक कोई दूसरा आगे सीट पर बैठ जाएगा तो फिर जब तक वो नहीं छोड़ेगा अभी सारी जिंदगी उसने नहीं छोड़ी तो सीट भर गई बस खत्म, तो यहां गवर्नमेंट का थोड़ी हर साल पोस्ट निकलती रहेंगी, क्यों? मान लो कि महाविद्यालय कोई संभालता है, जैन विचार विज्ञान कोई संभाल रहा है, अब वो मान लो उसने छोड़ा तो तू पकड़ ले कि नहीं, मैं सोचूंगा। लेकिन जब तो किसी ने पकड़ लिया तो जब तक वो नहीं छोड़ेगा, और हो सकता है कि वो 30 वर्ष नहीं छोड़ेगा तो तू भी बुढ़ा हो जाए। तो ये अवसर तेरे को गया जब तक सोचा सोची का ज्यादा काम नहीं है, होता क्या नहीं होता? वो अवसर जो है वो हमेशा खाली नहीं रहता है, नहीं? वो बहुत एक समय की बात होती है। मत चूके चौहान, जो चूका तो गया है, क्या तार बांस और क्या बोलते तू है, हाँ, तार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और उसने इसी वक्त तीर छोड़ा तो जाके सुल्तान खुद गया, क्यों ख्याल में आए ना? क्योंकि एक सेकंड का भी वो समय निकाल ले, जरा बगल में सुल्तान हो जाएगा तो फिर सुल्तान नहीं रहेगा। मैं यही बात ऐसे ही कह रहे हैं, क्या वो था ना, वो शब्द भेदी बाण अर्जुन था, कौन था कि आंखों पर पट्टी बांध दी बाद में, वो एक जगह कुत्ता भौंका तो एकदम तीर छोड़े तो सारे तीर वो भौंका ऐसा मुंह कर रहा था तो मुंह पूरा भर गया, ऐसा बंद नहीं कर सके। उस आवाज से इधर है, और उस आवाज से जाकर उस मुंह में जाकर आवाज निकल रही थी ना, एक एक तीर तो एक यहां चला गया तो दूसरा उसके ऊपर जाकर उसके ऊपर लगे नहीं, तो दूसरा उसके बगल में, तीसरा उसके बगल में, चौथा उसके बगल में, तो नीचे फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, ऐसे मुंह खुले हुए में तो मुंह बंद करे उसके पहले तो पूरा मुंह भर दिया उसने, हैं, सील कर दिया पूरा बस। ऐसे उपयोग साथियों का काम है। तो ये जो धोबी के सदन पैरो बरायो बस मेरो मान रहो है, ये जो दृष्टांत की दृष्टि है त्याग की, ये जब तक ठीक ही न पड़ जाए उसके पहले तो काम कर ले। अरे ये भादों की अंधेरी रात अमावस्या की, अब घने बादल हैं और बिजली चमक रही है, उस बिजली की चमक में तुझे सुई में डोरा डालना है, क्या? तो ऐसा तैयार होकर बैठ, ऐसा हाथ रख ले सुई पर, ऐसा डोरा, और बिजली के चमक का इंतजार कर, और जब तुम कर डाल लेना तो चमकी में देखता हूं, तब तक तो वो बुझ जाएगी, तो डालने का चांस नहीं रहेगा। इतनी जागृति का ये काम है। देखो लगा ना पड़ा, जब तक परभक्त के मित्री यह अभावार्थ, यह परभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व, माने दृष्टि तो पहले ही पड़ जाएगी, उससे पूर्व का मतलब उसी समय समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया, क्योंकि यह प्रसिद्ध है वस्तु तो पर की जान लेने के बाद ममत्व नहीं रहता, माने समकाल है, सम्यक ज्ञान होने के बाद त्याग का समकाल है ये बताना है। तो वो क्रिया रूप त्याग होने तो समकाल हो ही नहीं सकता है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, बाद में सिद्ध हुआ ना, समकाल सिद्ध होगा तो ही ज्ञान प्रत्याख्यान सिद्ध होगा, क्योंकि वो जो क्रिया हुई ना छूटने की उसमें तो समकाल हो ही नहीं सकता। जब उनको बैराग हुआ भरत जी को, तो उसके बाद में दीक्षा ली, दीक्षा कल्याणक हुआ, और जब मान लो मरा आज्ञा भगवान का, और देव आए और फिर देवों की और परसों की लड़ाई भई, इतना के बाद में तो फिर जब दीक्षा, क्या मतलब रहा उसका? तो बैराग तो कभी हुआ, और दीक्षा कब भई और कब क्या हुआ है? तो असलियत में त्याग भाव तो उसी वक्त हो गया ज्ञान में प्रत्याख्यान, अब जो जो प्रक्रिया संपन्न होगी वो होती रहेगी, उसमें क्या फर्क पड़ना है? इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये सिद्ध करने के लिए उसका समकाल सिद्ध किया। दूसरे काल की बात नहीं है, कल करूंगा क्या नहीं, कल करने वाले का कल कभी आता ही नहीं है, जिनने जब किया तत्काल ही किया, जब तुम करोगे तो तत्काल ही होएगा, उसके बाद में गर्म लोहे पर ही उसको कुछ रूप दिया जा सकता है,
और 15 मिनट में ठंडा हो जाएगा, फिर उसे गर्म करना पड़ेगा। ख्याल नहीं ना, जब वो गर्म हो गया तुमको जैसा मोड़ना हो मोड़ लो, तो तत्काल जैसा मोड़ना हो मोड़ लो, गर्म है जब तक, ठंडा होने के बाद काम नहीं होगा, समझे ना। और इसलिए तो तुम नहीं तो धोंकते रहो, गर्म करते रहो। ऐसे ही निरंतर जनवाणी के अभ्यास के माध्यम से इस भाव को, उसने लिखा था बार बार कही गई आगम वाक्य के माध्यम से, तो गुरु कहते हमें ही कहे, हे आत्मा शास्त्र में तो ये लिखा है कि देह भिन्न और आत्मा भिन्न, तो जरूरी थोड़ी गुरु जी बार बार कहेंगे, एक जगह गुरु जी ने कह दिया और कोई आगम बात कहे ना, हम अपने आत्मा को कहें। गुरु जी नहीं मिले तो बारम्बार कहे गए क्यों, और बस एक समय ऐसा जब परिपाक आ गए तो अपने स्वयं डोरा डाल लेना बिजली, तुम कहते बस तेरा कल्याण हो जाएगा।